ओम शांति। अव्यक्तवाणी 8 मई 1969। मनसा वाचा कर्मणा को ठीक करने की युक्ति। चौथा पॉइंट है मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने के लिए सिर्फ तीन अक्षर याद रहें। मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने लिए सिर्फ तीन अक्षर याद रहे। वह तीन अक्षर कौन से हैं? यह तीन अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। मनसा के लिए है निराकारी, वाचा के लिए है निरहंकारी, कर्मणा के लिए है निर्विकारी। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना? तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, यह तीन बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा तीनों को ठीक करने लिए सिर्फ तीन अक्षर याद रहे। सभी अपनी मनसा को चेक कीजिए, वाचा को चेक कीजिए, कर्मणा को चेक कीजिए। कैसी है आपकी मनसा? मतलब आपकी वृत्ति, आपके विचार कैसे हैं? अपने को चेक कीजिए आप। बहुत बार कैसे होता है कि हम हमारे हिसाब से सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमारी मनसा बहुत अच्छी है, हमारा मन बड़ा शुद्ध है, बड़ा अच्छा है। पर बाबा कहते हैं ना कि परिवार का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाबा का तो होना ही चाहिए, परिवार का भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो अपने मन को चेक करो, आप पूछो साथी सहयोगियों को कि आपकी मनसा कैसे है, वो बताएंगे आपको कि आपकी मनसा कैसी है। मन से जो निकलता है वह वाइब्रेशंस के रूप में महसूस होता है, तो आपके वाइब्रेशन से परिवार वाले पहचान जाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी मनसा कैसे है। मनसा में वृत्ति भी आ जाती है, मन तो आता है, वृत्ति भी आती है। अभी भी बच्चों को पता नहीं है पर बच्चों के मन में बहुत कुछ बच्चों ने जमा करके रखा है, वो सब मन में है और जो मन में है वह वाचा में निकलता है। हमें बहुत बार ऐसे लगता है कि हम ऐसे ही बोल रहे हैं, पर हम हमारी वाणी को चेक करें कि हमारी वाणी से किसी को दुख तो नहीं होता। आप अपनी वाणी को सहज नहीं लीजिए। कभी कभी किसी किसी को लगता है हाँ मेरी वाणी ऐसी है, तो बाबा कहते हैं बदलेंगे कब? मंजूर है कि आपकी वाणी ऐसी है वैसी है, पर बदलेंगे कब? वाणी को वाचा को ठीक कब करेंगे? या जीवन भर ऐसी ही वाणी चलानी है, लोगों को दुख देने वाली? आप जब बात करो तो आपकी बातों में जिससे बात कर रहे हो उन सभी को एक तो शांति, दूसरा सुख और तीसरा प्रेम महसूस हो। ऐसी आपकी वाचा हो, वाणी हो, यह तीनों भी गुण उन्हें महसूस हो। जब कभी शक्ति की जरूरत होगी तो शक्ति महसूस हो जाएगी, पर रोज की जीवन में शांति, सुख और प्रेम, यह तीनों गुण अनुभव करें। जिनसे आप बात कर रहे हो वो सभी, तो अपने को चेक कीजिए, क्या आपकी वाणी ऐसी है या बस चिल्ला रहे हो, हर्ट कर रहे हो। कभी कभी हमारे शब्द बहुत सहज होते हैं, हमें लगता है कि हमने नॉर्मल बात की, पर आपको पता होना चाहिए कि सामने वाले के लिए यह शब्द किस प्रकार के हैं। आपके हिसाब से नहीं चलो, वास्तविक रूप से बच्चों को, जो बच्चे ब्राह्मण परिवार के साथ चलते हैं, खास करके उनको जो परिवार में इकट्ठा चल रहे हैं, एंड ऑफ द डे सभी को पूछना चाहिए कि आज हमारी वाणी से कोई दुखी तो नहीं हुआ ना, यहाँ पर किसी को दुख तो नहीं लगाना, पूछना चाहिए। और जब पूछेंगे कोई तो बाकियों को भी सही उत्तर देना चाहिए। अगर आपको दुख लगा है तो बता दो कि आप दुखी हुए हो, आपने जो इस तरीके से बात की वह अच्छी नहीं लगी, इससे हमें दुख मिला, आपको बताना चाहिए। तब तक वाणी सुधरेगी नहीं, बच्चे बदलेंगे नहीं। यह अभ्यास करना चाहिए, रोज सोने से पहले एक बार, ऐसे नहीं कि फोन करके, नहीं। बाबा कहते जहां आप ब्राह्मण परिवार के रूप में इकट्ठा सेवा दे रहे हो उनके लिए ही, जो कोई अगर करना चाहे वो लौकिक में भी अपने परिवार के लिए कर सकते हैं। कि परिवार वालों को पूछो कि आज हमसे वाचा के रूप में कहीं गलती तो नहीं हुई ना, किसी बात से कोई दुखी तो नहीं हुआ ना, पूछो परिवार वालों को। और अगर बात हुई है तो उसे आप रियलाइज करो, समझो कहां पर आप चूके हो, कहां आपने गलती की है। ऐसे नहीं कि बस बातें सुनाए, नहीं, बदलना है आपको, अभी बदलने का समय आ चुका है, अंत का समय है। तो अपनी वाणी को चेक करो, विचार तो किसी को पता नहीं है कि आपके मन में क्या चल रहा है, पता करने वाले आपकी आंखों से पता करेंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है। पर बाबा कहते हैं कि यह स्थिति सभी की नहीं है, पर वाचा से सभी का मन पता चलता है। तो रोज आपको यह होमवर्क करना चाहिए, एंड ऑफ द डे पूछना चाहिए कि कोई दुखी तो नहीं हुआ। और वापस से कहते हैं, अगर आपको पूछा जा रहा है तो आपको भी सच बताना चाहिए, आप छिपाओ नहीं किस बात को। और अगर सुख मिला वाणी से तो वो भी बताना चाहिए कि आज दिन भर में आपके मुख से रतन निकले, हमें बड़ी तृप्ति मिली, हमें बहुत अच्छा लगा, बताना चाहिए। तभी आत्मा का विकास होगा, आत्मा उन्नति की ओर बढ़ेगी। फिर है कर्मणा, कर्मणा को भी रोज पूछना चाहिए कि आज हमसे ऐसा कोई कर्म तो नहीं हुआ ना जिससे किसी को दुख मिला या किसी का नुकसान हुआ, पूछना चाहिए। पूछेंगे तो लोग बताएंगे, और बताएंगे आपको पता चलेगा तो आप अपने अंदर बदलाव कर पाएंगे। इसलिए आप पूछिए, और पूछने के बाद आपका कर्तव्य है बाकियों का सच बताना। तो ये तीन बातें ठीक हो गई, आप देवता बन गए। देवताओं की यही तीन बातें सदा ठीक रहती हैं। अभी बाबा कहते हैं कि यह तीन बातों को ठीक करने के लिए तीन अक्षर याद रहें। वह तीन अक्षर कौन से हैं? यह तीन अक्षर रोज मुरली में भी आते हैं। बाबा कहते हैं रोज मुरली में आते हैं। मनसा के लिए है निराकारी, वाचा के लिए है निरहंकारी, कर्मणा के लिए है निर्विकारी। तो अपनी मनसा को निराकारी स्वरूप में चेक करो, निराकारी अवस्था में ठीक रहेंगे, मनसा ठीक रहेगी। ठीक रहना माना क्या है? दिन भर में उस अवस्था में रहना। आप बिंदी हो, सितारा हो, बाप की संतान हो, या फिर आपके जो स्वरूप है आदि अनादि पूज्य ब्राह्मण फरिश्ता, इस अवस्था में रहेंगे बाबा कहते मनसा ठीक रहेगी। निराकार अवस्था में जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितना आत्मिक स्थिति में रहेंगे, उतना मन शुद्ध होता जाएगा। मन को शुद्ध करने का, बुद्धि को स्थिर करने का और संस्कारों को परिवर्तन करने का एक ही उपाय है, आत्मिक स्थिति में रहो। किसी का मन बड़ा चंचल है, आत्मिक स्थिति की आवश्यकता है। मन सिर्फ देह अभिमान में चंचल होता है, आत्मिक स्थिति में कभी भी मन चंचल नहीं होता, मन स्थिर ही रहता है। तो निराकारी अवस्था में रहिए और देखिए आपका मन क्या कर रहा है, कैसे मन शुद्ध हो रहा है, कैसे पवित्र बनता जा रहा है। निराकारी अवस्था। वाचा के लिए है निरअहंकारी। जब तक आपके अंदर अंश मात्र भी अहंकार है, अंश मात्र भी, आपकी वाचा से लोग दुखी ही होंगे, इस बात को ध्यान में रखना। भले जिस किसी को पता है कि आपके अंदर अहंकार है, तो निकालने की कोशिश कब करेंगे? या फिर पूरी आयु लोगों को दुखी करते रहेंगे उस अहंकार के कारण? तो जब तक आप निरअहंकारी नहीं बनते, आपकी वाचा शुद्ध नहीं बनेगी, मुंह से पत्थर निकलेंगे जो दूसरों को दुखी करेंगे, रतन नहीं निकल सकते। भला आपका ज्ञान योग कितना भी हो, आप कितने भी ज्ञानी योगी हो, रतन नहीं निकल सकते, आपकी मुख से पत्थर ही निकलेंगे। तो निरअहंकारी होना बहुत आवश्यक है। अहंकार से वाचा व्यर्थ चली जाती है और अहंकार सबसे बड़ा नुकसान करता है। जिसके पास अहंकार है उसके पास वाचा सिद्धि कभी नहीं आ सकती, वरदान की ताकत कभी नहीं आ सकती, वो किसी को भी वरदान नहीं दे सकता। जो निराकारी अवस्था में नहीं है वो मनसा सेवा सकाश की सेवा नहीं कर सकता। जो निरअहंकारी नहीं है वो वाचा सेवा कभी नहीं कर सकता, उनके मुख से ज्ञान नहीं निकल सकता, मुश्किल है। ज्ञान निरअहंकारी अवस्था में चलता है। अगर अहंकार है तो ज्ञान नहीं आ सकता, आपसे किसी की उन्नति नहीं हो सकती, आपसे किसी को मार्गदर्शन नहीं मिल सकता। अगर आप अहंकार में हैं, निरअहंकारी रहेंगे, वाचा सिद्धि मिल जाएगी। भले आपका योग ज्ञान कितना है वो बाबा जाने, पर अगर आप निरअहंकारी अवस्था में हैं तो आपको वाचा सिद्धि 100% मिलेगी। वाचा सिद्धि माना क्या? दूसरों का भला करने की सिद्धि। आप किसी के लिए भी बोलेंगे कल्याण हो जाए, उनका कल्याण हो जाएगा। तो अपनी वाचा को चेक कीजिए। निरअहंकारी है क्या? सारे दिन भर में गलती से किसी एक का भी आपने दिल दुखाया, फिर भी सारे दिन भर की वाचा सिद्धि चली गई। वाचा के ऊपर बड़ा ध्यान देना पड़ता है, वाणी के ऊपर बड़ा ध्यान देना पड़ता है। ऐसे कभी भी कुछ भी बात नहीं की जाती, बहुत संभल कर बात की जाती है। आप नहीं जानते कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली किस बात को लेकर कौन दुखी हो जाएगा, आपको पता नहीं होता, और आप अपनी मस्ती में चलते हैं, दुनिया को दुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं अपनी वाचा को चेक करो। आप यहाँ अच्छे बनने आए हो, बाप समान बनने आए हो, अपनी मनसा वाचा कर्मणा ठीक करने आए हो, तो अपनी वाचा पर ध्यान रखो। जिसका अपनी वाचा पर नियंत्रण है वही ज्ञानी और योगी बन सकता है। अपनी वाचा पर नियंत्रण, बस मुंह में आया और बोल दिया, ऐसे नहीं होता। तो बाबा कहते हैं वाचा के लिए निरअहंकारी होना बहुत आवश्यक है, वरना आपकी वाणी शुद्ध नहीं रहेगी। कर्मणा के लिए है निर्विकारी। अगर आप निर्विकारी हैं तो ही आप कर्मणा सेवा कर सकते हैं और सभी को सिखा सकते हैं। निर्विकारी अवस्था, अपने को चेक कीजिए। ये सब विकार मोह से आते हैं। ये जो मोह है, मोह अगर निकल गया तो सब विकार खत्म हो जाते हैं, आप निर्विकारी बन जाएंगे। अपनी कर्मणा को चेक कीजिए, आपकी दृष्टि से कर्मणा में दृष्टि भी आ जाते हैं। आपके हाथों से क्या कर्म होते हैं, विश्व के प्रति, सभी के प्रति, अपने को चेक कीजिए। गलत नहीं होते, बहुत अच्छी बात है, पर बाबा कहते सही क्या जमा किया, यह भी तो चेक करो। गलत नहीं किया, कुछ घाटा नहीं हुआ, लेकिन सही जमा नहीं किया तो समय तो व्यर्थ हो गया। तो सही को जमा करो, कर्मणा से, वाचा से, मनसा से जमा करो। तो अपनी कर्मणा को चेक करो। यह समझ की बात है बच्चों के लिए। आपके पास वही आएंगे जिनका और आपका लेन देन का खाता बचा है। मदद मांगने हो, मदद लेने हो या देने हो, वही आएंगे जिनका और आपका खाता बचा है। तो अपनी कर्मणा को चेक करना, आपकी कर्मणा कैसी है। कर्मणा माना हर रूप से, कहा भी जाना, कुछ भी करना, ऐसे नहीं है। बाबा ने नियम दिए हैं, मर्यादाएं दी हैं, उस मर्यादाओं में चलना माना अपनी कर्मणा को ठीक रखना। यह जो शरीर है यह एक इंस्ट्रूमेंट है, यह मिला है पार्ट बजाने के लिए, लेकिन आखिर पार्ट बजाती आत्मा ही है। विचारों से, उससे पहले वृत्ति से, फिर विचारों से, वाणी से, कर्म से, आत्मा ही पार्ट बजाती है। तो आप अपने को चेक कीजिए कि इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा आप कैसे पार्ट बजाते हैं, क्या पार्ट बजाते हैं। जो भी आपके संबंध संपर्क में आते हैं, क्या उन्हें सुख मिलता है आपसे, किसी भी प्रकार से हो, मनसा वाचा कर्मणा, वो सुखी होके जाते हैं क्या, उन्हें स्नेह मिलता है, शांति मिलती है, चेक कीजिए। तो कर्मणा के लिए निर्विकारी बनो, विकार मन में ना हो, निर्विकारी बनो। अटैचमेंट निकल जाए, निर्विकारी अपने आप बन जाएंगे। इसलिए गीता में गाया हुआ है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। यह मोह ही है जो इंसान को, आत्मा को इस सृष्टि में बांध के रखता है। अगर मोह नहीं है तो आपको कोई नहीं बांध सकता। पेड़ को आपने पकड़ा है, पेड़ ने आपको नहीं पकड़ा, और आप कहते हो छुड़ाओ। बाबा कहते छोड़ो तो छूटे। आप छोड़ने का संकल्प करो तो छूट जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा। देवताओं का सबूत वाचा और कर्मणा का यही है ना। बाबा कहते देवता है वाचा और कर्मणा से जाने जाते हैं, समझे जाते हैं। उनकी पहचान वाचा और कर्मणा से होती है। जिनकी वाचा शुद्ध है, जिनकी कर्मणा अच्छी है, वो देवताओं के आसपास पहुंच रहे हैं। और जब पूरी रीति शुद्ध बन जाएगी, देवता बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हमें देवता ही तो बनना है, इसीलिए तो इस ज्ञान में आए हैं। बस अपनी वाचा और कर्मणा को ठीक करो, देवता बन जाएंगे। सबसे पहले वाचा पर ध्यान दो, वाचा ठीक रहेगी, कर्मणा ठीक रहेगी। तो निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, यह तीन बातें अगर याद रखी तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों ही बहुत अच्छे रहेंगे। बाबा कहते हैं तीन बातें याद रखो तो मनसा वाचा कर्मणा बहुत अच्छे रहेंगे। जितना निराकारी स्थिति में रहेंगे उतना ही निरहंकारी और निर्विकारी भी रहेंगे। एक का कनेक्शन दूसरे से है, इसलिए बाबा कहते हैं आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ तो अहंकार समाप्त हो जाएगा। जिनके अंदर अहंकार है, अहंकार हमेशा दृष्टि से और वाचा से दिखाई देता है। दृष्टि से बहुत कम दिखाई देता है, 20-25%, पर वाचा से बहुत ज्यादा दिखाई देता है। तो जो अहंकार में है, मतलब वो आत्मिक स्थिति में नहीं है, वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो आप अपने को चेक कीजिए। चेकिंग करते चलिए और चेंज अपने आप में करते चलिए। तो निरहंकारी बनेंगे तो निर्विकारी भी अपने आप हो जाएंगे। तो पहले बनना है निराकारी, तो जितना हो सके आत्मिक स्थिति में आ जाओ। जितना आत्मिक स्थिति बढ़ेगी, बाकी की यात्रा अपने आप होती जाएगी। और आत्मिक स्थिति यह मुख्य सब्जेक्ट है, बच्चों को इसी पर ध्यान देना है, जितना हो सके इस पर ध्यान देना है। 24 घंटा यही स्मृति रहे कि हम आत्मा हैं। अगर यह स्मृति रहेगी तो ही उन्नति हो पाएगी, वरना मुश्किल है थोड़ा। विकार की कोई बदबू नहीं रहेगी, यह है मुख्य पुरुषार्थ। बाबा कहते निराकारी अवस्था में रहना, यह है मुख्य पुरुषार्थ। यह तीन बातें याद रखने से क्या बन जाएंगे, त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं यह तीन बातें अगर याद रही तो त्रिकालदर्शी भी बन जाएंगे, माना तीनों कालों को जानने वाले, और भविष्य में फिर विश्व के मालिक। बाबा कहते यह त्रिकालदर्शी भी बनेंगे और भविष्य में विश्व के मालिक भी बन जाएंगे। अभी बनेंगे त्रिलोकी नाथ और त्रिकालदर्शी। अगर इन तीन बातों को समझा तो आप बनेंगे त्रिलोकी नाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकी नाथ का अर्थ तो समझा है, जो तीनों लोकों को ज्ञान के सिमरण करते हैं, वह है त्रिलोकी नाथ। बाबा कहते हैं तीनों लोकों का ज्ञान जिन्हें है, ज्ञान से उन्हें सिमरण करते हैं, वह है त्रिलोकी नाथ। तो अगर निराकारी अवस्था में पहुंच जाएंगे तो यह सारी डिग्रियां मिलना बहुत आसान है। इसके लिए पहले बस ये ABCD की पढ़ाई करनी है आत्मिक स्थिति की। डिग्रियों के इच्छा में नहीं रहूं, पहले पढ़ाई करूं। डिग्रियां तो अपने आप मिल जाएंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। बच्चे आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करते और फिर ज्ञान की बड़ी बातें करते हैं। अभी बच्चों के लिए समझ की बात है, जो बच्चे आत्मिक स्थिति की पढ़ाई नहीं करते उनसे कभी भी कोई भी ज्ञान ना सुने। उनको ज्ञान देने की अथॉरिटी बाबा ने दी नहीं है। जब भी कोई ज्ञान दे रहा हो उसे पूछना कि आप आत्मिक स्थिति का अभ्यास कितना करते हो, पूछना उन्हें। अगर नहीं करते हैं ना तो कहना कि हम आपसे ज्ञान नहीं ले सकते, क्योंकि आप मायावश होकर ज्ञान दे रहे हो, बॉडी कॉन्शियसनेस में ज्ञान दे रहे हो। भले अपने आप को निमित्त समझते हो, ये भी आपका ऊपरी भाव है, क्योंकि अगर आप सही बात को समझते कि बाबा क्या सुना रहा है, क्या सिखा रहा है, तो आप बाबा की श्रीमत का पालन करते। जितने भी ज्ञान देने वाले हैं ना, बड़े बड़े ज्ञानी, उनको पूछना आप अपनी कॉन्शियसनेस में कितना होते हो, आप अपनी अवस्था में कितना रहते हो, पूछना उन्हें बस। और कहना कि हम नहीं रहते तो ये भी कहना उन्हें कि आपको ज्ञान देने का अधिकार नहीं है, आप ज्ञान नहीं दे सकते, और अगर देना भी चाहो हम आपका ज्ञान नहीं सुन सकते, क्योंकि शायद नहीं 100% कि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हो तो आप हमें भी बॉडी कॉन्शियसनेस में लेके आएंगे, हमारा भी विनाश कर देंगे आप। इसलिए जो बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं उनसे ज्ञान नहीं लेना चाहिए, भले कोई भी हो, ब्राह्मण परिवार से हो या बाहर से हो। बाबा किसके लिए कहता है कि किसी की सुनो नहीं और सिर्फ मैं जो कहता हूँ वही सुनो, वह बॉडी कॉन्शियसनेस वालों के लिए कहता है। जो सोल कॉन्शियसनेस में है वो कुछ भी दे वो ज्ञान में ही कन्वर्ट होगा। तो बाबा कहते हैं आप अपने को भी चेक करना, जब कभी भी आप किसी को ज्ञान देते हो तो आप कितना सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हो, पूछो एक दूसरे से। और नहीं करते हैं उनको वही बोलो कि आप शांत रहो, फिर कोई ज्ञान नहीं दो, बेहतर है बाबा जो मुरली सुनाता है उससे हम ज्ञान लेंगे, बाबा देगा हमें, आप नहीं देना। समझ की बात है बच्चों के लिए, भल कितना भी ज्ञान हो उनके पास, इस बात को बुद्धि में नोट करके रखना। बॉडी कॉन्शियसनेस में आपको कितना भी ज्ञान मिले, कितना भी ऊंचा बड़ा ज्ञान मिले, वो विनाश ही करने वाला है आपका। इसलिए उस ज्ञान पर न चलना चाहिए न उसे सुनना चाहिए, सुनेंगे तो भी आप बिगड़ेंगे। कोई बॉडी कॉन्शियसनेस में दे रहा है उसका ज्ञान सुनेंगे तो भी आप बिगड़ेंगे। इसलिए जब भी आप सुनते हो तो अपने को चेक करना कि आपको सुनना चाहिए या नहीं चाहिए, और जब भी आप ज्ञान देते हो तो भी चेक करना आप सोल कॉन्शियसनेस में रहते हो या नहीं रहते हो। बस ऐसे नहीं कि मुंह में आया और बोल दिया ज्ञान, बाबा कहते ऐसे नहीं होता। ज्ञान कोई खाने की बात नहीं है, हर किसी को ज्ञान देने का शौक बड़ा है, हर किसी को अच्छा लगता है कि हम ज्ञान दे, कुछ ज्ञान की चार बातें सुनाए। पर बाबा कहते हैं आपके सुनने और सुनाने से किसी का अगर विनाश हो गया तो बोझा किसके ऊपर आएगा, कभी सोचा है आपने? आप कुछ भी सुनाओगे ज्ञान की बातें बॉडी कॉन्शियसनेस में, बोझा किसके ऊपर आएगा? आपके ऊपर। एक तो आपका बोझा खत्म नहीं हो रहा है जो इतने वर्षों का है, ऊपर से ये नया बोझा क्रिएट कर रहे हैं दुनिया को मिस गाइड करके। तो बाबा कहते हैं ऐसे मत करो, ज्ञान सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस में दिया जाता है, और सोल कॉन्शियसनेस में जो ज्ञान मिलता है उसमें सिर्फ सोल कॉन्शियसनेस की बातें होती है, क्योंकि यही तो राज है, यही तो चाबी है दुनिया की, सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्थिति, और तो कुछ है नहीं। तो बाबा कहते हैं आप अपने को भी चेक करो और दूसरों को भी चेक करो, कहाँ से लेना है और कहाँ देना है ये भी चेक करो। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान कहाँ भी नहीं दिया जाता। बाबा ये भी कहते हैं कि चेक करके आत्मा की पात्रता देख के ज्ञान देना, वरना वो भी बोझा आपके माथे पर आएगा कि आपने किसी को भी कुछ भी ज्ञान सुनाया। इतना ऊंचा ज्ञान, भले आप आत्मिक स्थिति में हो, लेकिन अगर आपको उस अवस्था में पूरा अनुभव नहीं हो रहा है, तो आपने इतना ऊंचा ज्ञान किसी को भी सुनाया उसका भी बोझा आपके माथे पर आएगा, क्योंकि उसे वो धारण नहीं कर रहा है। जो धारणा करेंगे उन्हें ही ज्ञान सुनाया जाता है, जो धारणा नहीं करते उन्हें ज्ञान नहीं दिया जाता, वो भी देने वाले के ऊपर बोझा आता है। इसलिए इस दुनिया में ज्ञानी मत बनो, आपका सब कुछ चला जाएगा। बनना है तो योगी बनो अभी के लिए। भल बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तू बच्चे प्रिय हैं, लेकिन कौन से ज्ञानी तू बच्चे प्रिय हैं जो बाबा का ज्ञान लेकर अपने कर्मों में लाते हैं? वो ज्ञानी तू बच्चे प्रिय हैं। उनके कर्म से दुनिया को ज्ञान मिलता है। ज्ञान देना नहीं ये बात नहीं है, ज्ञान देना आपका परम कर्तव्य है, लेकिन बाबा आपको बता रहा है कि कौन सी स्थिति में देना है, आत्मिक स्थिति। तो आपको पता होगा कि कौन से समय में कौन सा ज्ञान देना है। तो ये समझ की बात है बच्चों के लिए। तो जितना हो सके समझने की कोशिश कीजिए। अभी बनेंगे त्रिलोकी नाथ और त्रिकालदर्शी। त्रिलोकी नाथ का अर्थ तो समझा है, जो तीनों लोकों के ज्ञान के सिमरण करते हैं वह है त्रिलोकी नाथ, क्योंकि बाप के साथ आप सभी बच्चे भी हैं। बाबा कहते हैं जैसे बाप है वैसे आप हूँ, आप भी बाप समान हो। तो पहले बाप समान बनिए, फिर विश्व सेवा कीजिए। तो मेहनत कीजिए बाप समान बनने की, यह आपका पहला कर्तव्य है। पहले बाप समान बनने की मेहनत कीजिए, सेवा अपने आप हो जाएगी। बड़े बनो बाबा कहते हैं, बड़े मना क्या है, बाबा के जैसे बनो। जब बाबा के जैसे बनेंगे सेवा होती ही रहेगी, क्योंकि जो बाप का कर्तव्य वो बच्चों का कर्तव्य। तो इस बात को ध्यान से समझिए कि आपको अपने ऊपर ही अटेंशन रखना है, आत्मिक स्थिति के लिए, निराकारी अवस्था के लिए, खाते पीते उठते बैठते, बस इस अवस्था को ध्यान में रखिए। बस एक सितारे को तो देखना है, एक बिंदी को तो देखना है, और क्या करना है? अभी भी बात कर रहे सुन रहे बिंदी को ही तो देखना है, कि बिंदी बोल रही मुख के द्वारा, बिंदी सुन रही है कानों के द्वारा, सितारा बोल रहा है सुन रहा है, यही तो करना है। और क्या है बात, और क्या मेहनत है? तो जितना हो सके समय इसी में बिताना, हर कर्म में अपने स्वरूप को याद रखना, बाबा की याद अपने आप रहेगी। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और अपने स्वरूप में रहना, अपने स्वरूप को नहीं भूलना। जिस सेकंड स्वरूप भूल गए उस सेकंड माया आई, दुख आया। इसलिए स्वरूप को सदा याद रखना, स्वरूप में ही सारी शक्तियां हैं। स्वरूप भूले शक्तियां खत्म हो गई, गुप्त हो गई। स्वरूप याद किया शक्तियां इमर्ज हो गई। इसलिए सदा स्वरूप में रहना और सुखी रहना। अच्छा, ओम शांति।